ओ विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। तत्व विवेक नामक पहले प्रकरण में अभ्यास के लिए 16वां श्लोक है। सत्वा शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्या वशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्यादनेकधा सा कारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तमः प्रधानः प्रकृतेः तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत् पवनतेजोऽम्बू भुवो भूतानि जज्ञिरे सत्वं सहि पञ्चभिस्तेषाम् क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसना ग्राणाख्यमुपजायते तैरन्तः करणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यान्निश्चयात्मिका रजोंसहि पञ्चभिस्तेषाम् क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायूपस्ताभिधानानि जज्ञिरे तै सर्वै सहितै प्राणो वृत्तिभेदात् स पञ्चधा प्राणोपानसमानश्च उदानव्यानौ च ते पुनः बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पञ्चकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते। तो प्रतिबंधक क्या है? यह अनादि अविद्या एव। दृष्टांत में सत चित आनंद अद्वितीय आत्मस्वरूप का अपरोक्ष न हो पाने में प्रतिबंधक कारण है। प्रतिबंधक है अनादि अविद्या। अनादि अविद्या का लक्षण क्या है? दो शब्दों से उसको कहा जाता है। माया ही अनादि अविद्या है। माया क्या है? चिदानंदमय जो ब्रह्म है उसका जो प्रतिबिंब से युक्त हुई हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसको माया कहा गया। माया का लक्षण बता दिया है, 15वें श्लोक माया का लक्षण हो गया। चिदानंदमय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का प्रतिबिंब से युक्त होना और सत्व रज और तम गुण से युक्त होना, ये जो प्रकृति है इसी का नाम माया है। और ये दो प्रकार की है, छह शब्द से तीसरा प्रकार भी ले लेना, यानी ये माया तीन प्रकार की है। तीन काम करने के लिए ये माया तीन प्रकार की हो गई। माया का पहला प्रकार क्या है? शुद्ध सत्व। माया का दूसरा प्रकार क्या है? मलिन सत्व। माया का तीसरा प्रकार है तम प्रधानता। 18वें श्लोक में कहेंगे वो शुद्ध सत्व, मलिन सत्व और शुद्ध तम, ये अर्थ समझ लेना हो। ये माया का तीन प्रकार है, लेकिन ये नहीं समझ लेना कि तीन प्रकार में शुद्ध सत्व में रजोगुण और तमोगुण नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। तीनों प्रकार में माया त्रिगुणात्मिका ही है। तीनों प्रकार में ब्रह्म का प्रतिबिंब से युक्त होना ये समान है। शुद्ध सत्व में भी ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त होना, मलिन सत्व में भी ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त होना और तम प्रधान में भी ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त होना, ये तीनों अवस्था में समान है। और तीनों ही त्रिगुणात्मिका है, ये भी ध्यान रख लेना। वो शुद्ध सत्व भी त्रिगुणात्मिका है, मलिन सत्व भी त्रिगुणात्मिका है, तम प्रधान भी त्रिगुणात्मिका है। हमारे मधुसूदन तिजोरी वाला जी कहते हैं द्विबद्धम सुबद्धम भवती, अभी माला पहनाते हुए वे कह रहे थे। रस्सी को जितनी बार घुमाकर बांधो उतना ही मजबूत होता है। इसी तरह स्वामी जी आप बार बार शब्दों को प्रयोग करके जो समझाते हो वो इतना पक्का हो जाता है कि निकलने का नाम नहीं लेता है, बता रहे थे वो। तो द्विबद्धम सुबद्धम भवती और त्रिबद्धम दृढ़बद्धम भवती, दो बार बांधो तो और मजबूत होगा, तीन बार बांधो तो और दृढ़ होगा। इसलिए मैं इसको बार बार तुम्हें तो रहा हूं। तो क्योंकि ये विषय ऐसा है, बार बार प्रकारांतर से सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ते समय प्रकारांतर नहीं होता है। गुरु जब सुनाते तब प्रकारांतर से सुनाते, तब जाकर और स्पष्ट होता है। अब माया को तीन भेद से क्यों विभक्त किया महाराज? अविद्या माने प्रतिबंध को, माया को तीन भेदात्मक क्यों कल्पना की है? बोले तीन प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तीन भेदात्मक कल्पना करनी पड़ती है। सबसे पहले किस प्रयोजन को सिद्ध करना है? देखो ब्रह्म को तो पैदा करना नहीं है, ध्यान से सुन लेना हो ये शब्द। ब्रह्म को तो बनाना नहीं है, ब्रह्म को बिगाड़ना भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म को पैदा करना नहीं है, बिगाड़ना नहीं है माने मारना भी नहीं है, बात करना भी नहीं है, है? ब्रह्म को बात करना है। ब्रह्म जैसा है वैसा ही रहे, ये हमें इष्ट है। अब तुम्हें ईश्वर को बिगाड़ना है कि नहीं, तो उठ के चले जाओ, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को बिगाड़ना नहीं है तो यहां बैठने की जरूरत नहीं है। बिगाड़ना है शब्द का अर्थ ईश्वर को बात करना है कि नहीं, बोलो। ईश्वर को बात नहीं करना है, ईश्वर जैसा है वैसे हमें चाहिए, तो जाओ उठ के जाओ, वो तुम्हारे साथ है। अब प्रेम पूरे आश्रम में रहोगे तो हमारे जैसे दिमाग खराब हुए साधु ईश्वर का बात कहे बिना छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हें ईश्वर के बात को स्वीकार करनी पड़ेगी, और हम ये सीधे कह देंगे ईश्वर का बात किए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो बात करने को तैयार होगे कि नहीं? तब बोलो, जब हम ये कह देंगे पक्की बात, ईश्वर के बाद किए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तब तुम अपने कल्याण के लिए ईश्वर का बात करने को तैयार होगे कि नहीं? होगे? क्या बात करते हो? ठीक कह रहे हो, ईश्वर की आवश्यकता तब नहीं है। कब नहीं है? जब तुम्हारा कल्याण होगा तब ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर की आवश्यकता नहीं रही तो अनावश्यक ईश्वर को रख करना क्या है? तो उसको बात करना तुम्हें क्या आपत्ति है, बोलो? हैं? तुम्हारे कल्याण के बाद ईश्वर की उपयोगिता, ईश्वर की आवश्यकता न रहने पर उस अनावश्यक अनुपयोगी ईश्वर की बात करने में तुम्हें आपत्ति क्या? जब आत्मानंद को आपत्ति नहीं है, अखंडानंद को आपत्ति नहीं है, हैं? तो तुम्हें क्या आपत्ति? कौन महात्मा होगा जो प्रेमपुरी आश्रम में आकर तुम्हारे कल्याण की बात कहे, तुम्हारे मोक्ष की बात कहे और ईश्वर की बात न करे? ऐसा कौन महात्मा होगा, बोलो? शंकराचार्य जी के नाम के रोटी भात खाई होगी तो वो ऐसा हिम्मत नहीं करेगा। हां, किसी और आचार्य के नाम के जो रोटी दाल भात खाई हो तो ईश्वर को बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सत बात कह रहा हूं मैं, तुम्हें अटपटा लग रहा हो लेकिन सत बात कह रहा हूं, सच्ची बात है। क्योंकि अद्वैत वेदांत अद्वैत संप्रदायक में आदिगुरु शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, गौड़पादाचार्य जी का सिद्धांत है, गोविंद पादाचार्य का सिद्धांत है, सुखदेव स्वामी का जो सिद्धांत है, वेदव्यास जी का जो सिद्धांत है, आदि गुरु भगवान शिव का जो सिद्धांत है, वह ईश्वर को बाद किए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो, और ईश्वर का बात कब करोगे? जब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो बात करोगे। पत्तल कब फेंकोगे तुम? तो खाना खा लोगे और उसकी आवश्यकता अब नहीं रहेगी तो उस झूठे पत्तल को रखे रहोगे कि फेंक दोगे? और ईश्वर तो फिर झूठा हो जाएगा। हो ये सच कह रहा हूं, तुम्हें जरा अटपटा लग रहा है आज, लेकिन सत्य है ये बात। किसी के सामने भी जाके कहते ना मेरा नाम लेकर, आत्मानंद जी ने ऐसा कहा है। हाँ, अद्वैत वेदांत का पक्षपाती होगा तो वह स्वीकार करेगा। तब जब बाद में ईश्वरत्व को बात करना है तो जीव को बनाए रखना है कि बात करना है? हैं? फिर जगत को बनाए रखना है कि बात करना है? बात किसका करोगे? बोलो, जगत बनाओगे तब बात कर सकोगे। यदि जगत बनाओगे नहीं, स्वतः सिद्ध सिद्ध करोगे तो स्वतः सिद्ध वस्तु का बात तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? स्वतः सिद्ध का कोई बात कर सकता है? हैं? जगत का बात तुम तब कर पाओगे क्योंकि जगत माया के द्वारा कल्पना की है, माया ने बनाया है। किसी का बनाया हुआ होगा तभी तुम बात कर पाओगे, तुम्हारा बनाया हुआ होगा तो भी तुम बात कर पाओगे, किसी और का बनाया हुआ होगा तो भी तुम बात कर पाओगे। स्वतः सिद्ध होगा किसी का भी बनाया हुआ नहीं होगा तो कोई भी उसका बात नहीं कर सकता। जगत का बात वेदांती तब कर सकते हैं जब जगत को माया पैदा करती है। बात समझ में आया कि नहीं? माया यदि जगत को पैदा न करे, जगत स्वतः सिद्ध हो जाए, तो वेदांति के अवेदांति के बाप भी जगत का बाद नहीं कर सकती है। इसी तरह जीव का बाद वेदांति तब कर पाएंगे जब अविद्या के द्वारा पैदा किया गया हो, माया के द्वारा पैदा किया गया हो। यदि माया के द्वारा जीव को पैदा नहीं किया हुआ होता तो जीव को वेदांती किसी भी हालत में किसी भी उपाय से जीव का बाद नहीं कर पाते। हाँ, समझ में आई कि नहीं बात? इसी तरह वेदांती ईश्वर का भी बाद कर देते हैं, कर सकते हैं वो, हैं? ईश्वर का भी बाद कर सकते हैं और बात करते ही हैं। ईश्वर का बाद तभी कर सकते हैं जब ईश्वर को भी किसी ने बनाया हो। ईश्वर को किसने बनाया? बस खत्म हो गई बात। ईश्वर को माया ने बनाया है, इसीलिए वेदांती ईश्वर का बात कर सकते। ब्रह्म का बात क्यों नहीं कर सकते? ये ब्रह्म का परमात्मा का बाद वेदांति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह किसी का बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू परिभू याथा तत्यतो हर्तान वेददात छात्सतिभ्य समाभ्य। चलो, इस श्लोक की भूमिका हमने बना दी है कि तुमको सब नई बात सुनने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल सिद्धांत की बात है। हाँ, वेदांत सिद्धांत की बात कह रहा हूं। वेदांत के बेसिक में जब आप इस बात को समझोगे तभी आपका वेदांत में दृढ़तापूर्वक प्रवेश हो पाएगा, अन्यथा वेदांत में दृढ़तापूर्वक प्रवेश हो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, नहीं तो आप घबरा जाओगे, ईश्वर का बात करने की बात जब कर देंगे तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि आपकी मान्यता ये होगी कि ईश्वर स्वतः सिद्ध है, और वेदांती कहेंगे कि वो स्वतः सिद्ध ईश्वर का बात करो, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। जब तुमको ये दिखा दिया जाए कि ईश्वर ऐसे बना है, ईश्वर कैसे बना है उसकी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी कि नहीं, देख लो ईश्वर ऐसा इस तरह बना है, इस तरह ईश्वर सिद्ध हुआ है। ध्यान देना हो आप लोग, ब्रह्मा और ईश्वर की बात जब करते हैं ये दो चीज अलग अलग हैं और नहीं भी हैं। ये दो चीज अलग अलग हैं और नहीं भी हैं। निरुपाधिक रूप में ईश्वर और ब्रह्मा दो चीज अलग अलग नहीं है, सोपाधिक अंश में ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है। तो यही तो बताने जा रहे हैं यहां। इस बात को आपने समझना बहुत जरूरी है। जब ईश्वर और ब्रह्म की एक की बात कह दिया जाता है तब ये समझ लेना ये निरुपाधिक की बात कर रहे हैं। ईश्वर और ब्रह्म की अलग अलग भिन्नता की बात कर रहे हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सोपाधिक की बात कर रहे हैं। अब ईश्वर के जो है वर्थ का सिस्टम क्या है ये बता रहे। ईश्वर का बर्थडे मनाते हो कि नहीं है? किसका मनाते हो? है? ये ईश्वर का नहीं है, ये देख लेना, यही तो तुम लोग गड़बड़ करते हो। जन्माष्टमी ईश्वर का बर्थडे नहीं है। हाँ, वो कृष्ण का है। अब ये तुम लोगों को बहुत जटिलता लगेगी। ईश्वर अलग चीज है बाबा। कृष्ण को सगुण साकार मानते हो कि सगुण निराकार मानते हो? बर्थडे किसका मनाते हो? जो सगुण साकार है उसका बर्थडे मनाओगे ना? सगुण निराकार का कहीं बर्थडे मनाते हो? और निर्गुण निराकार का बर्थडे मनने का सवाल ही नहीं है। सगुण निराकार का भी बर्थडे मनाने का संभव नहीं। सगुण निराकार का यदि बर्थडे मनानी हो तो आकाश का बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो? बोलो, आकाश क्या है? सगुण निराकार है। सगुण निराकार का बर्थडे मनाना हो तो आकाश का बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो? क्या आकाश परमात्मा नहीं है? कृष्ण से कम है आकाश? तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, नमस्ते वायु हो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म। वायु का बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो? वायु क्या है? वायु सगुण साकार है, सगुण निराकार है, निर्गुण निराकार है? सगुण निराकार है वायु। सगुण साकार नहीं है। तो सगुण निराकार का बर्थडे मनाना हो तो वायु का बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो? है? तो तुम जन्माष्टमी रामनवमी जो मनाते हो वो सगुण साकार का मनाते हो। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ। अब मनाना हो तो अब हम बता देंगे कि ईश्वर का सगुण निराकार का बर्थडे मनाओ, लेकिन डे फिक्स हो तो बर्थडे मनाया जाए, डे फिक्स नहीं है लेकिन व्रत है। व्रत है, डे फिक्स नहीं है, व्रत है। व्रत है इसलिए कह रहा हूं कि उसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? ईश्वर की, सगुण निराकार की। कैसे बना है ईश्वर? बना की बात कह रहा हूं, वो ध्यान देना। ईश्वर कैसे बना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेदांत सिद्धांत में परमार्थ में बात करना है, वास्तव में बात करना है उसका, इसलिए बना है हम कह रहे हैं। क्योंकि माया से जो जुड़ जाएगा, अविद्या से जो जुड़ जाएगा, उसमें बनावटी होगा ही होगा। माया से जो अटैचमेंट होगा, माया से जो जुड़ाव होगा, उसमें बनावटी तो होनी ही है। क्यों बनावटी होगी महाराज? क्योंकि माया खुद बनावटी है। माया खुद बनावटी होने के कारण माया से जो जुड़ेगा वो रियल कैसे होगा? उसमें बनावटीपना आएगा। माया का जब बात करोगे तो उसके द्वारा बने हुए का बात होगा कि नहीं? माया का जब तुम बात करोगे, माया के द्वारा बने हुए का स्वतः बात होगा कि नहीं? ये जब माया के द्वारा ईश्वर कल्पना हुई है, ईश्वर सृष्ट हुआ है, ईश्वर बना है, तो माया का जब बात होगा तो ईश्वर का अस्तित्व कहां से रहेगा? तो ईश्वर का भी बात स्वतः हो जाएगा। तो ये नहीं समझ लेना कि ब्रह्म ईश्वर और तुम अलग अलग रहोगे, ऐसा नहीं होगा। परमार्थ में अभी तो तुम सारा संसार को लेकर बैठे हो, तो ईश्वर को भी अलग लेकर बैठने में हर्जा नहीं है। अब संसार को जब लेकर बैठे हो, अलग बैठे हो कि नहीं? ये मेरा घर है, मेरा दुकान है, ये मेरा शरीर है, मेरे परिवार है, मेरे कुटुंब है, मेरा देश है, संसार को लेकर बैठे हो कि नहीं? तब इसके साथ साथ ईश्वर को भी लेकर बैठ जाओ, कोई हर्ज नहीं है। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबो बसी कृत्य। ये पॉइंट पर ध्यान देना, मैंने अभी तक जो भूमिका बनाई है, ये दूसरे लाइन के पहले वाक्य है, माया बिंबो बसी कृत्य तामस्यात सर्वज्ञ ईश्वर। ये ईश्वर की सिद्धि है। वेदांत के हिसाब से ईश्वर इस तरह सिद्ध हुआ है। मैंने सिद्ध हुआ ये शब्द प्रयोग किया, ईश्वर इस तरह बना है, बस खत्म हो गई। बना है कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो बना होता है वो बिगड़ता है। तो ईश्वर बिगड़ेगा कि नहीं? ये बिगड़ेना का मतलब क्या? बात करना। वेदांत बिगाड़ने का मतलब होता है बात करना। वेदांत किसी को नाश करने की बात नहीं करता है। वेदांत तो जगत को भी नाश करने की बात नहीं कहता है। क्या कहता है? बात करो। जहां बात का अर्थ क्या होता है, बात की परिभाषा क्या है, जो वस्तु जहां जिस रूप से दिख रहा है वो वस्तु वहां उस रूप से नहीं है, बस। तब आपको ये कहना पड़ेगा किसी और रूप से है, ये प्रश्न उठेगा, तब हां कहना पड़ेगा उस रूप से नहीं है जिस रूप से तुम देख रहे हो, वो वस्तु वहां उस रूप से नहीं है। तो फिर ये जिज्ञासा होगी कि किस रूप से, तो दूसरे रूप से होगा। दूसरे रूप क्या है, तो बोले अधिष्ठान। जो दिख रहा है वो अध्यस्त है, जो अध्यस्त तुमको जिस रूप में दिख रहा था वो अध्यस्त तुमको उस रूप में वहां नहीं मिलेगा, और अध्यस्त तुमको सत्य रूप में दिख रहा था, वेदांती क्या कहेगा, वो सत्य रूप में नहीं है। उदाहरण वही प्रसिद्ध है वेदांत में, जो वस्तु जहां जिस रूप से दिख रहा है वो वस्तु वहीं उस रूप से नहीं। जो वस्तु सर्प वस्तु, जहां रस्सी के जगह पर, जहां माने रस्सी के जगह पर जिस रूप में दिख रहा था सर्प के रूप में दिख रहा था, जो वस्तु सर्प वस्तु जिस रूप में दिख रहा था सर्प रूप में दिख रहा था, वो वस्तु वहां उसी अधिष्ठान में उसी रूप से नहीं है। नहीं है ये बात नहीं, उसी रूप से नहीं माने सर्प के रूप में नहीं है। तब यह जिज्ञासा हुई कि किस रूप में है, तब रस्सी के रूप में है ये कहना पड़ेगा। तब यही है कि ईश्वर को तुमने जिस जगह पर ईश्वर के रूप में देखा वो ईश्वर उस रूप में, उस जगह पर ईश्वर के रूप में नहीं है। तब हुआ कि किस रूप में, तो ब्रह्म के रूप में। अधिष्ठान तो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म के रूप में तो है ईश्वर, लेकिन ईश्वर के रूप में जो दिख रहा होगा तो परमार्थ में ईश्वर के रूप में नहीं होगा। घड़ा जहां पर जिस रूप में दिख रहा है, वेदांती क्या कहेगा, तुम्हें घड़ा जहां पर जिस रूप में दिख रहा है, घड़ा किस रूप में दिख रहा है, घट के रूप में दिख रहा है, वहीं पर घट घट के रूप में नहीं है। तब किस रूप में है, मिट्टी के रूप में है। तो क्या हुआ, जब मिट्टी के रूप में है कह देने पर घट रूप बाद हो गया कि नहीं, क्योंकि दो वस्तु तो एक ही साथ होंगे नहीं, घट भी सत्य मिट्टी भी सत्य, ये दो एक साथ सत्य तो होंगे नहीं। मिट्टी के रूप में सत्य है कहोगे तो इसका मतलब घट रूप में वह मिथ्या हो गया, बाद हो गया। आभूषण तुमको जिस रूप में दिख रहा था वो आभूषण सुवर्ण में उस रूप में नहीं है, किस रूप में है, सुवर्ण के रूप में है। तब फिर आभूषण का रूप बाधित हो गया कि नहीं है, ये वेदांत का प्रक्रिया, ये प्रक्रिया को आप समझोगे तब तो वेदांत समझ में आएगा, नहीं तो हजार बार सुने हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, और जगत मिथ्या होता ही नहीं है। तो इसका बेसिक नहीं समझने के कारण हमको ये बात समझ में नहीं आती है। तो ईश्वर कैसे बना, माया बिंबो वशीकृत्य तामसात सर्वज्ञ ईश्वरा। ये कल से ये मूल विषय पर प्रवेश कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। ब्रह्म और माया, माया कैसी है, त्रिगुणात्मिका है ना, ब्रह्म का प्रतिबिंब से युक्त त्रिगुणात्मिका माया। पहले तो इतनी बात आप समझ लो, माया जहां भी जब भी माया का अस्तित्व होगा ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त होने पर ही माया का अस्तित्व होगा। इसलिए विद्यारण्य मुनि जी ने चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता ये शब्द प्रयोग कर दिया है। तमो रज सत्व गुणा प्रकृतिर ये माया, सा माया द्विविधा, सत्व शुद्धि अविशुद्धि चकारात तमः, तीन भेद की माया है। अब विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है, माया का तीन पार्ट्स हो गए ना, शुद्ध सत्व भाग, मलिन सत्व भाग और तम भाग। विशुद्ध सत्व भाग में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म प्रतिबिंब ये समझ लेना, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, जैसे मिरर में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, इसी तरह विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा और उस प्रतिबिंब ने, प्रतिबिंब ने, ध्यान देना, अपनी उपाधि विशुद्ध सत्व को अपने ही बस में रखा। ये वाक्य को बड़ा ध्यान से सुनना हो, माया बिंबो वशीकृत्य, माया को वशीकरण कर लिया किसने, प्रतिबिंब ने, प्रतिबिंब ने अपने उपाधि को अपने वश में कर लिए, ये प्रतिबिंब में ये क्षमता आ गई। एक दृष्टांत, तब उसका नाम क्या पड़ा, ईश्वर उसका नाम पड़ा। ये समझना बहुत जरूरी है, वो अपनी उपाधि को अपने वश में, प्रतिबिंब ने अपनी उपाधि को अपने वश में किया तो उस प्रतिबिंब का नाम ईश्वर पड़ा। उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम क्या पड़ा, ये उपाधि रहित तो प्रतिबिंब नहीं होगा, फिर उपाधि रहित तो प्रतिबिंब कभी भी नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। उपाधि प्रतिबिंब जब भी होगा उपाधि सहित होगा, उपाधि सहित प्रतिबिंब ने अपने उपाधि को अपने वश में किया तब उस उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम पड़ा ईश्वर। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लो, प्रतिबिंब ने अपनी उपाधि को अपने वश में कैसे किया, तो उसको एक दृष्टांत से समझाना पड़ेगा। हम ध्यान से समझना ये प्रसंग, पहले तो ईश्वर कैसे बना इस बात को तो आपको समझ में जरूरी, समझना जरूरी पड़ेगा है? है? जब ईश्वर बना है ये समझोगे तभी जाकर जगत भी बना है ये समझ में आएगा है? ईश्वर ही जब बना हुआ है, उस ईश्वर ने जगत बनाएगा तो वो क्या असली होगा? ईश्वर ही जब बनावटी है तो बनावटी ईश्वर ने बनाया हुआ जगत का असली होगा, देख लो है? तो कैसे बस में किया, एग्जाम्पल आप लोगों ने स्फटिक को तो सुना है, स्फटिक मणि तो सुना है ना, बड़ा स्वच्छ होता है। अब यूं समझ लो कि यहां विद्यारण्य मुनि जी ने माया का जो प्रथम भाग है, विशुद्ध सत्व जो कहा है, वह स्फटिक मणि की तरह ले लेना, क्योंकि स्फटिक मणि भी बिल्कुल कंचन होता है, स्वच्छ होता है, सफेद होता है कि नहीं, बोलो, उसके साथ समानता ले लेना। अब स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम, लाल फूल, जपा कुसुम नाम का, क्योंकि जपा कुसुम हमेशा लाल ही होता है, सफेद जपा कुसुम होता नहीं है, तो लाल सुर्ख लाल जो जपा कुसुम है उसको लाकर स्फटिक मणि के बगल में रख दो, तो जपा कुसुम हो गया बिंब, स्फटिक मणि हुआ दय, किसने कहा स्पष्ट मणि प्रतिबिंब, स्फटिक मणि हुआ उपाधि, जपा कुसुम हुआ बिंब, बिंब के सामने स्फटिक मणि, स्फटिक मणि उपाधि हो गया। तो स्फटिक मणि में बिंब रूप लाल जपा कुसुम का प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको है? पक्की बात, किसको समझ में नहीं आए बोलो। स्फटिक मणि यहां रखो, पहले दृष्टांत समझो। स्फटिक मणि तो समझ में आ रही है कि नहीं, क्या स्फटिक मणि है? स्फटिक मणि यहां रखो, स्वच्छ साफ चमकता हुआ सफेद, उसके बगल में जपा कुसुम लाल फूल रख दो, फूल हो गया बिंब, स्फटिक मणि हुआ उपाधि। तो फूल के रखते ही फूल का प्रतिबिंब स्फटिक मणि में पड़ेगा कि नहीं? तो लाल फूल का प्रतिबिंब कैसा होगा? लाल ही होगा। तब फूल लाल है इसीलिए प्रतिबिंब भी लाल होगा। प्रतिबिंब कहां है? स्फटिक मणि में। फूल कहां है? मणि से बाहर। प्रतिबिंब मणि में। तो लाल मणि प्रतिबिंब ने क्या किया? पूरे स्फटिक मणि को ही लाल बना दिया। स्फटिक मणि कैसी थी? स्फटिक मणि कैसी थी? जपा कुसुम के प्रतिबिंब सफेद मणि में पड़ते ही स्फटिक मणि का स्वरूप कैसा हो गया? लाल हो गया। यानी प्रतिबिंब का जो स्वरूप है उपाधि का भी वही स्वरूप हो गया है। बिंब का, अब तुम ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसी पर हम बात। बिंब का जो स्वरूप है प्रतिबिंब का वही स्वरूप हो गया। प्रतिबिंब का जो स्वरूप है उपाधि का भी वही स्वरूप हो गया। हो गया कि नहीं बोलो, कोई शंका? इस दृष्टांत में कोई शंका? बिंब का जो स्वरूप लाल, प्रतिबिंब का भी वही स्वरूप लाल, प्रतिबिंब का जो लाल स्वरूप है प्रतिबिंब के उपाधि का भी वही स्वरूप हो गया लाल। तो स्फटिक कैसा दिखने लगा? लाल दिखने लगा। ये दृष्टांत किसका है? प्रतिबिंब ने अपनी उपाधि को अपने वश में कर लिया। अपने वश में कर लिया माने अपना जैसा है वैसे ही बना दिया। प्रतिबिंब जैसा है उपाधि भी वैसे ही बन गया। तो उसका नाम हो गया ईश्वर। ये विशुद्ध सत्व उपाधि ब्रह्म, ब्रह्म के बगल में विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब, ब्रह्म चैतन्य है कि नहीं? ब्रह्म कैसा है? चैतन्य रूप है। चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसा होगा? चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसा होगा? चैतन्य रूप ही होगा। प्रतिबिंब भी चैतन्य रूप हो गया। जैसा बिंब वैसा ही प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पड़ा था? विशुद्ध सत्व में। उस विशुद्ध सत्व ने विशुद्ध सत्व रूपी उपाधि को अपने जैसा ही चैतन्य ही बनाकर बदलकर रख दिया। तो सोपाधिक ईश्वर बने। किसने का जीव हो गया? विशुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित जीव होता है तब तो फिर जीव को रोना ही नहीं पड़ता है। ये हो गया ईश्वर। ये ईश्वर का जन्म हुआ आज। ईश्वर का जन्म इस तरह होता है। अब कब हुआ है इसलिए डेट फिक्स नहीं है, इसलिए बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं ले जी उल्टा बोल रही है, आज 12 जून है, ले ये देख लो। ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया अब?
सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्यां माया विद्धि चते मते माया बिंबो वशीकृत्य।
प्रतिबिंब ने अपने उपाधि को अपने वश में किया, तब उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम पड़ा ईश्वर। स्फटिक मणि और जपा कुसुम, और जपा कुसुम का प्रतिबिंब स्फटिक मणि में, प्रतिबिंब ने मणि सफेद को लाल बनाकर दिखा दिया, तो अपने बस में किया ना। तो अब जीव कैसे बनाए, ये दूसरे श्लोक से कल के प्रसंग में जीव कैसे बनता है ये बात विद्यारण्य मुनि जी बताएंगे। ईश्वर कैसे बना ये बात आज स्पष्ट हो चुका है। ये समझने, यदि आपको प्रवचन सुनकर समझ में नहीं आया, बार बार कैसेट सुन लेना, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।